Hare Krishna. So thank you everyone for coming again. I'm very happy to be with all of you. And today we will continue speaking on the pastime of Nalakuvara and Manigriva, who were cursed by Narad because of their bad activities.
तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आप सबके साथ में पुनः एक बार संग प्राप्त करके, और आज हम सब पुनः उस कथा को आगे बढ़ाएंगे जहाँ पर नारद मुनि नलकुबेर और मणिग्रीव को उनके जो बुरे कार्य थे उसकी वजह से उनको शापित किया गया।
Just like yesterday, I will not read the verses and purports because of time, but please in your own time do read these verses and purports. Today we will be discussing Canto 10, Chapter 10, Text Number 9 and 10.
तो जैसे भी कल भी हमने श्लोक और अनुवाद पर समय की कमी होने के कारण नहीं पढ़ पाए थे, तो वैसे ही आज हम सब सबसे विनती करते हैं कि आप लोग अपने समय से इसको जरूर अध्ययन करिएगा। दसवें स्कंद के दसवें अध्याय के नौ और दस श्लोक।
Yesterday we discussed all about the dangers of money.
तो कल हमने श्रवण किया सब कुछ धन के बारे में, धन के दुष्प्रभाव के बारे में।
I'm just going to ask you some questions and you can write the answers in the chat box. Just I want to make sure that you are listening.
तो प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उसके उत्तर के लिए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना उत्तर, जिससे वो ज्ञात होगा कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं।
So Kunti Maharani, she said that there are four things that people are intoxicated by in this world. These are the four things that we gain as a result of good karma. Can you write any of those things that you remember in the chat box? What are the four results of good karma?
तो कुंती महारानी कहती है कि चार चीजें जो हैं वो हमें अच्छे कर्म की वजह से प्राप्त होती हैं, उसमें से आप कुछ लिख सकते हैं।
Thank you. Sirisha says, good birth, very good. Janma. Braj Prakash Prabhu got all of them. Manaharini Subhadra Mataji says, beauty, yes. Shri means beauty. Janma means good birth. Yes, good education, which is Shruta. And one more. Opulence, very good. Aishwarya, yes. Knowledge, yes. Good education, yes. So these are the four things. And out of all of these four things, Srila Prabhupada mentions that one of them is the most dangerous of all. Of all of these four, which one is the most dangerous? Yes, Padmavati says Aishwarya, yes. Opulence.
So Prabhupada ne kaha tha ki ek jo hai wo sabse khatarnak hai, wo kaun se hai, wo bataiye.
So when in the Bible there is a famous saying that money is what?
To Bible mein kya bataya gaya hai ki dhan jo hai wo kya hai?
Anyone remember the famous saying, money is the, very good, root of all evil, yes. And many times in our own tradition we are reminded why money is so dangerous.
और अलग अलग अपने अपने प्रधान में संप्रदाय में बताया गया है कि किस प्रकार से धन जो है वो बहुत ही खतरनाक है।
When Parikshit was chastising Kali, then we remembered that there were four places Kali was given, and ultimately Kali was given the place to reside where gold is collected.
और हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज के राज्य में जब उन्होंने चार स्थान दिए थे उनको रहने के लिए, वो स्थान नहीं मिले कली को उनके राज्य में, तो उनको जहां पर धन और स्वर्ण एकत्रित होता है वो स्थान दिया गया।
So devotees should be very careful. They should not try to seek to gain too much wealth unnecessarily.
इसलिए भक्तों को बहुत सावधान होना चाहिए और उनको बहुत ज्यादा धन के बारे में विचार नहीं करना चाहिए।
One devotee used to joke that my prayer is Mani na, Mani deina.
तो प्रभु जी बता रहे हैं बहुत सुंदर रूप से कि एक भक्त प्रार्थना करते हैं कि अमानी ना मन ही देना कि मतलब मुझे धन नहीं प्राप्त हो.
I don't want respect. I don't want any of these things. But money I want. Money I definitely I need.
तो मुझे अमानी मतलब मान तो नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन मनी धन जो है वो चाहिए.
But Mahaprabhu tells us in the very next verse, na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadisa kamaye, that I do not desire wealth, women, followers. I only desire your bhakti life after life.
लेकिन चंद्र महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में कि मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बहुत सुंदर जन्म नहीं, बहुत से अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर तक हर जन्म में सिर्फ आपकी अहितुकी भक्ति चाहिए.
However, all of us are living in the world and we have to interact with money. At the same time, we must be detached from money. So my question is, there is a special type of detachment or vairagya given by our acharyas. What is that called?
तो हमको भक्तों को दिनचर्या में धन से सामना करना होता है, तो किस प्रकार से हम इसके उपयोग से, इसके प्रभाव से बच सकते हैं इसके साथ में उपयोग करते हुए, उसके लिए एक शब्द दिया गया हमारे आचार्यों ने, किस प्रकार का वैराग्य हमें पालन करना चाहिए.
Very good. Manoharini Subhadra Mataji, can you unmute yourself and tell me what is Yukta Vairagya?
तो मनोहर सुभद्रा माताजी ने बताया उत्तर उसका, युक्त वैराग्य. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कृपया अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकती हैं कि क्या उसका अर्थ होता है.
दत्त प्रांस प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर क्लास. युक्त वैराग्य मींस टू एंगेज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट फॉर वन्स ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन.
Wonderful. Thank you so much. Yes.
Hare Krishna. It
means that yukta comes from the word yuj, just like we have yoga, which comes from the word yuj.
बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी ने. युक्त जो शब्द है वो संस्कृत में मूल जो शब्द है युज से आते हैं, जैसे कि योग है वो भी युज शब्द ही उसका मूल है.
So yuj means to connect. So yukta vairagya means when you connect everything with Krishna, then ultimately you are renounced because you use everything for Krishna's pleasure.
तो उसी प्रकार युक्त का मतलब कि जोड़ना अपने आप को, अर्थात जब सब कुछ हम भगवान के साथ में जोड़ते हैं तब उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है.
So Mataji explained one aspect of yukta vairagya, which is that we try to use our money in service to Krishna. This is the first principle which will protect you from wealth degrading you. If you use your wealth in service.
ये पहला सिद्धांत हमने समझा था कल. माता जी बताया कि जैसे अगर हमको धन के दुष्प्रभाव से बचना है तो भगवान की सेवा में धन का उपयोग होना चाहिए.
However, I also gave one second principle that we should try to embrace in our life in order to ensure that wealth does not degrade us. Does anyone remember the second principle? First principle, service. What's the second principle?
पहला सिद्धांत था सेवा, और दूसरा सिद्धांत प्रभु ने क्या बताया था, जिससे कि हम उसके प्रभाव से दुष्प्रभावित नहीं होंगे, तो दूसरा सिद्धांत क्या बताया गया था?
Yes, Mataji says charity, this is service, giving, but I also gave one extra principle. It also begins with S.
एक और भी चीज बताई गई थी जो प्रभु ने बताई थी कल.
Yeah, Raj Prakash Prabhu. He is translating. Yes, simplicity. We must embrace simplicity in our life.
तो हम लोग को सादा जीवन और उच्च विचार इसको अपने जीवन में अपनाना होगा.
And finally, I explained yesterday about what is actually the real wealth in our life.
और अंततः प्रभु जी ने बताया था कि हमारे जीवन में वास्तविक धन क्या होता है.
So one type of wealth is the material wealth, but what is higher than material wealth?
तो जो भौतिक धन है उससे ऊपर क्या होता है?
Bhakti is topmost. What comes high? Yes, knowledge comes higher.
तो ज्ञान उससे ऊपर होता है?
Above knowledge, what comes next as a bigger wealth in a devotee?
और ज्ञान से ऊपर फिर क्या आती है?
Yes, Ramchandra Prabhu got correct. Detachment, nearly, no. Sadhana, yes, sadhana. Yes, sadhana is higher.
तो साधना जो है वो हमारे ज्ञान से भी ऊपर वो धन बताया गया.
And topmost wealth that we have is bhakti, prema bhakti, golokera prema dhan, harinam sankirtan.
और सर्वोपरि जो धन है वो है गोलोक प्रेम धन, जो प्रेम धन है भगवान का, कृष्ण प्रेम का प्रेम.
In England, there is one saying that the richest person is not the one who has the most, but the person who needs the least.
तो वहां पर कहावत है एक अंग्रेजी में कि जो सबसे धनी व्यक्ति हैं वो नहीं है जिनके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि जिनको सबसे कम जिनकी आवश्यकता है वो सबसे धनी है.
So yesterday we talked all about this wealth, and today we will talk about another principle, which is non-violence.
तो कल हम सब ने इस धन का दुष्प्रभाव उसके बारे में चर्चा किया और आज हम लोग अहिंसा के बारे में कुछ हम सीखेंगे.
Because Nalakuvara and Manigriva had very much wealth, then they become very, very proud.
क्योंकि नलकुबेर मणिग्रीव के पास में बहुत ज्यादा धन था, इसके लिए वो उससे बहुत अहंकारित हो गए थे.
And when someone has pride, then sometimes they can also become very, very violent and cruel towards others.
क्योंकि जब बहुत ज्यादा धन और अहंकार हो जाता है तो कभी कभी देखा जाता है कि वो सभी के प्रति बहुत निर्दयी और हिंसात्मक हो जाते हैं.
So in these verses of the Bhagavatam, it explains how Nalakuvara and Manigriva were committing great violence against animals and other living entities.
तो इन श्लोकों में बताया गया श्रीमद् भागवतम में दसवें स्कंद के दसवें अध्याय के नवे दसवें श्लोक में, जहां पर नलकुबेर मणिग्रीव किस प्रकार से वो गर्वित होकर के वो हिंसात्मक जीवन व्यतीत कर रहे थे सभी जीवों के प्रति.
If one is violent, they will never be able to awaken bhakti within their hearts.
तो जो हिंसा से प्रभावित है वो कभी उनके हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति प्रकट नहीं हो सकती.
Violence makes one hard-hearted.
हिंसा हृदय को कठोर बना देती है.
But in order to awaken bhakti, the heart must become soft like butter.
लेकिन भक्ति करने के लिए हमारा हृदय बहुत कोमल नवनीत के जैसे होना चाहिए.
After Krishna left the world, then many, many people began misusing the Vedas and killing animals, committing violence to animals.
भगवान कृष्ण जब सुधाम चले गए तो उसके पश्चात बहुत से लोग वेदों का दुरुपयोग करते हुए वो बहुत से हिंसात्मक, बहुत से पशुओं का वध करना शुरू कर दिया.
Therefore, 2500 years ago, Krishna came in another incarnation to stop the violence that was going on in the world. Who is that incarnation?
तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार अवतरित होते हैं उस हिंसा को रोकने के लिए पूरे विश्व में. वो कौन अवतार हैं भगवान के?
Can anyone write on the chat which is the incarnation? Yes. Rakesh got it first. Buddha. Buddha came to stop violence in the world.
तो बुद्ध अवतार बिल्कुल सही, और ये आए थे पूरे सृष्टि में उस समय जो हिंसा हो रही थी उसको रोकने के लिए.
And therefore Buddha preached the philosophy of non-violence or having compassion towards all living entities.
इसलिए बुद्ध सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं अहिंसा और सभी जीवों के प्रति दया की भावना.
If we look through the Bhagavatam, then there are many, many different stories which warn us about the violent tendencies that we have to be careful of within ourselves.
तो अगर श्रीमद् भागवतम में देखें तो कई ऐसी कथाएं आती हैं जहां पर कि हमको ये हिंसात्मक जो दृष्टिकोण है, जो प्रवृत्ति है, उससे रोकने के लिए शिक्षा दी जाती है.
Today I will give you 5 different types of violence that you should be very, very careful to avoid.
तो आज प्रभु जी हमें 5 इस प्रकार के हिंसात्मक दृष्टिकोण बताएंगे जिससे हम सबको निश्चित रूप से बचना चाहिए.
The first type of non-violence that we should avoid is violence towards animals.
सबसे पहला हिंसा जो हमें बचना चाहिए जिससे वो है पशुओं के प्रति हिंसा.
In the fourth canto, we find the story of King Prachinabharishat.
चौथे स्कंद में राजा प्रचीन भरिषत की कथा आती है.
He had all opulence, all power. He had all material facilities. And he was enjoying life very, very much.
उनके पास सभी सुविधाएं थी, बहुत धन था, ऐश्वर्य था, राज्य था, और बहुत ही आराम पूर्वक वो अपने जीवन का यापन कर रहे थे.
However, he was going around his kingdom and he was killing many, many animals and he was thinking that he was enjoying, but he was not realizing that his future would become very, very terrible if he continued like this.
वो अपने राज के इर्द-गिर्द जाते थे और वो बहुत से पशुओं का वध करते थे. उनको लगता था कि वो बहुत आनंद का उपभोग कर रहे थे, ये नहीं जानते हुए कि ये आने वाले भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ी कष्ट का कारण बनेगा.
Therefore, when Narad Muni came and saw the whole situation, then because Narad Muni is very compassionate, then he began to instruct King Prachinabharishat in spiritual knowledge.
और जब नारद मुनि आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको सारी स्थिति को बताते हैं, क्योंकि नारद मुनि बड़े ही कृपालु हैं, तो वो उनकी स्थिति को उस निकालने के लिए उनको निर्देश देते हैं.
Narad Muni taught him in a very expert way. He did not directly tell him that he was doing wrong, but instead he told him a story of Puranjan.
तो नारद मुनि बड़े ही सुंदर रूप से उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से एक कथा के माध्यम से, पुरंजन की कथा के माध्यम से बताते हैं.
And in this story, Narad Muni began to explain to Prachinabharishat that just as you are killing these animals now, if you commit this violence and continue on in this way, then in your future lives, these animals will come and commit the same violence towards you.
और उस कथा के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार से अभी आप इन पशुओं का वध कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये पशु पुनः वापस आ करके और आपके प्रति इस प्रकार के हिंसात्मक कार्य करेंगे.
And in this way, gradually Prachinabharishat realized that this is not an appropriate activity to cause violence towards living entities. They also feel pain.
और फिर क्रमशः प्रचीनभरिषत समझ जाते हैं कि ये जो कार्य वो कर रहे हैं, इस प्रकार से हिंसा का कार्य, पशु वध, ये ठीक नहीं है और ये पशुओं को बहुत कष्ट दे रहा है और बाद में उनको कष्ट मिलेगा.
So every single year, billions of animals are killed simply because people want to enjoy some taste that feels good to them.
तो हम देख सकते हैं आधुनिक समाज में प्रतिदिन लगभग लाखों 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 करोड़ पशुओं का वध होता है, जिससे कुछ लोग केवल अपने जीवा के स्वाद के लिए करते हैं.
Srila Prabhupada explained that the violence that people commit towards animals is the cause of violence in the world between human beings.
Srila Prabhupada ji kehte hain ki jo pashuon ke prati ye himsa apnai ja rahi hai, yahi karan hai ki manushya ke beech mein bhi ye sab samaj mein manushya ke beech mein bhi ye jo himsatmak drishtikon dekhne ko milta hai.
So as devotees, of course, already we do not harm living entities, we do not eat meat, we do not engage in any such activities like this.
तो निश्चित रूप से भक्त होने के कारण हम लोग इस प्रकार से जो मांसाहार है या पशुओं का वध, उसमें हम इंगित नहीं होते हैं.
However, we should also try as much as possible to avoid products in which animals are exploited and animals are treated cruelly.
लेकिन इसके साथ ही साथ में हमें ऐसे भी और भी जो उत्पादन जो सामग्री हैं जिसमें कि ऐसे पशुओं के वध या करके या उनका मांस या उनके और भी कुछ ऐसे चीजें मिली ही हैं जो पशुओं का वध करके डालते हैं, उसको हमको उपेक्षा करनी चाहिए.
Sometimes it's very, very difficult, is unavoidable, but where we have a choice, we try to avoid it. For example, if you can obtain milk which is taken from a cow who is cared for properly, then this kind of milk we should try to get rather than factory milk.
तो ये कभी कभी असम कठिन हो जाता है इसको उपेक्षा करना, लेकिन जितना संभव हो सके हमें करना चाहिए। जैसे उदाहरण के स्वरूप, अगर कोई गाय, ऐसी गाय जो कि कसाई खाने में नहीं जाती है और गाय का दूध हमें प्राप्त हो रहा है अच्छे से, तो हमें वो प्राप्त करना चाहिए बजाय कि ऐसे दूध जो कि फैक्ट्री में या जहां पर पशुओं का वध करते हैं वहां से हम प्राप्त कर रहे हैं।
So these are some things to consider. Of course, we have to be practical, and Krishna says in this world, every endeavor is covered by some fault. So some imperfection will always be there, but we must try our best.
तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में हर कुछ कुछ न कुछ त्रुटियों से परिपूर्ण है, लेकिन जितना संभव हो सके हमको उचित कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।
So this was the first type of violence to avoid, violence against animals.
तो ये पहला हमें जो हिंसात्मक दृष्टिकोण, कैसे अहिंसा का जीवन व्यतीत करना है कि पशुओं के प्रति जो हिंसा है उससे बचना है।
The second type of violence we should avoid is violence towards other living entities.
दूसरी जो हिंसा जिससे हमें बचना चाहिए वो है अन्य मनुष्यों के साथ जो हिंसात्मक दृष्टिकोण है उससे बचना चाहिए।
Again in the fourth canto of Bhagavatam we find the story of Dhruva Maharaj.
जैसे कि हम देखते हैं चौथे स्कंद में ही ध्रुव महाराज की कथा आती है।
He had many many material desires and then he went to the Madhuvan forest in order to meditate on the Lord to try and fulfill his desires.
उनके पास भौतिक इच्छा थी, बहुत सी भौतिक इच्छाएं अपने पिता से बड़ा राज प्राप्त करने की, और वो जाकर के वहां पर मधुबन में भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं।
Then finally when he saw Lord Vishnu he made an amazing prayer stana bilasi tapasi stitoham tvam praptavan deva muni draguyam kacham vichinvan api divya ratnam swamin kritartosmi varam nayache. When he saw the Lord he said, I was searching for broken glass and instead I found a transcendental jewel, a divya ratnam.
और अंततः जब भगवान का दर्शन करते हैं तो बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पित करते हैं कि मैं तो आपके पास आया था कांच के टुकड़े प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको देख करके जैसे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया हो।
In this way, Dhruva Maharaj became spiritually realized and he achieved all of his desires.
इस प्रकार से ध्रुव महाराज आध्यात्मिक अनुभूति पूर्ण साक्षात्कार किए व्यक्ति हो गए और उनकी जो सिद्धता है पूर्णता उसको प्राप्त किए।
But later on, what happened is his stepbrother Uttam was killed by the Yakshas.
लेकिन बाद में क्या होता है तत्पश्चात कि उनके जो सौतेले भाई होते हैं उत्तम, उनका वध किया जाता है यक्षों के द्वारा।
And although Dhruva Maharaj had attained all of this spiritual realization, again Dhruva Maharaj became very, very angry.
हालांकि वो आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस घटना के पश्चात वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं।
And he became so angry that he went out to kill all of the yakshas.
और इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो जाते हैं और सभी यक्षों का वो वध करना शुरू करते हैं।
And he became so angry that he began killing thousands and thousands of them. And as he was killing thousands of them, Dhruva Maharaj's grandfather Swayambhuva Manu came to see him.
और इस प्रकार जाकर के वो फिर हजारों हजारों यक्षों का विनाश करते हैं, उनका उनका नाश करते हैं, उनका वध करते हैं, और ये देखते हुए अंततः उनके जो परम जो दादा हैं, परम पिता, वो जो है उनके मनु, स्वयंभू मनु, वो प्रकट होते हैं।
Swayambhuva Manu looked at Dhruva Maharaj. He said, "You have achieved so much spiritual knowledge. You have had the darshan of the Lord. How is it that you have become overcome by anger towards other humans like this again?"
और वो कहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने तो साक्षात भगवान का दर्शन किया है, भगवान की इतनी अनुभूति प्राप्त की है, कैसे संभव है कि आप इतने ज्यादा क्रोध से प्रभावित हो चुके हैं?
Swayambhuva Manu looked at Dhruva and said, "Titikshaya karunaya maitra chakila jantushu samatvena cha sarvatma bhagavan samprasidati." He said, "Krishna, is very, very happy with the devotee when he greets other people with tolerance, mercy, friendship, and equality.
तो वो कहते हैं ध्रुव महाराज को स्वयं मनु कि भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों से जब वो दूसरों को बड़े ही विनम्रता पूर्वक बड़े ही सहनशीलता से बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक जब उनको वो मिलते हैं उनका स्वागत करते हैं.
So this is very, very relevant for us because even after coming to Krishna consciousness, again we can become overcome by anger and commit violence towards others.
तो ये बहुत ही उचित है अनुचित है हम सबके लिए कि कृष्ण भावना भावित जीवन में आने के पश्चात भी हो सकता है कि हम दूसरों के प्रति क्रोध से प्रभावित हो सकते हैं.
Sometimes we commit violence to other people around us, not just by actions, but sometimes by the words that we speak.
और कभी कभी हम अपने कार्यों से नहीं लेकिन अपने वचन से अपने वाक्यों से दूसरों को हम दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं.
Therefore, Krishna says, even in your speech, you should be very, very careful. Anudvega karam vakyam satyam priyam hitam chayat. All your speech should be truthful, pleasing, and beneficial.
इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो वाणी की तपस्या है कि हमारे जो वचन हैं वो सत्य से परिपूर्ण होने चाहिए मीठे वचन होने चाहिए और उनके लाभ के लिए होने चाहिए.
Otherwise, your words can be very cruel and they can be very violent and they can cause other people much distress.
नहीं तो हमारी वाणी जो है वाणी के प्रभाव से वो बहुत ही निर्दयी हो सकती है और दूसरों को वो बहुत ही ज्यादा विचलित कर सकती है और उनको प्रभावित कर सकती है.
Sometimes you may not realize, but some small things that you say, people will remember for many, many years.
कभी कभी हम स्वयं इसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं लेकिन छोटी सी बात जो हमारे मुख से निकल गई लोग उसको कई कई वर्षों तक अपने दिल में बिठा के रखते हैं.
So we should be very careful how we act and how we speak when we are around others.
इसलिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक सावधान होना चाहिए कि हम कैसे वार्तालाप कर रहे हैं क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जब हमारे आसपास में लोग हों.
In English, they say your head should be like an ice factory and your mouth should be like a sweet factory.
तो अंग्रेजी में कहावत है कि हमारा जो दिमाग है वो ठंडे जो बर्फ की फैक्ट्री है उसके ऐसे होनी चाहिए और वाणी जो है वो चीनी की फैक्ट्री जैसे होनी चाहिए.
In this way, we should be careful, secondly, that we don't commit violence towards other people.
तो इस प्रकार से दूसरा जो ये तथ्य है कि हम दूसरों के प्रति दूसरे मनुष्यों के प्रति हिंसात्मक दृष्टिकोण नहीं रखें.
In the Bhagavatam, we also find another instruction on violence that we should not commit violence towards the environment and Krishna's energy around us.
और श्रीमद् भागवतम में और भी दृष्टिकोण हमें मिलते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे आसपास का जो वातावरण है जो पर्यावरण है के प्रति हमको
Again in the fourth canto, we find the story of the Prachetas.
जैसे कि चौथे स्कंद में ही प्रचेताओं की कथा आती है.
The Prachetas were the sons of Prachin Bharishat.
प्रचेता जो है वो जो राजा प्रचीन भरिषत हैं, उनके पुत्र हैं.
And when Prachin Bharishat told them that they should have children in order to populate the universe, first they went to the ocean underwater, they began doing austerities for many years in preparation for grihastha life.
तो जब प्रचीन भरिषत ने उनको कहा कि आप लोग को अब जो है ये प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करना चाहिए तो उन लोगों ने उसके पहले तपस्या करने की इच्छा प्रकट की और वो जा करके पानी के जल के अंदर बहुत वर्षों तक तपस्या किया.
After many, many thousands of years, they completed their austerities and they came out of the water, but they saw that all the environment was overgrown with trees.
लेकिन जैसे वो जब पानी से जल से बाहर निकलते हैं बहुत बहुत हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात तो देखते हैं कि पूरा जो आसपास का वातावरण है पर्यावरण वो सभी कुछ पेड़ों से आच्छादित हो गया है.
Because there were so many trees, there was no opportunity to do any farming, and in this way, people would not be able to survive. And so they saw that this was a very big problem, that the trees had become overgrown, and they became very angry at the trees.
तो वो देख करके वो उनको लगा कि इतने आच्छादित हो गए हैं पेड़ कि यहाँ पर तो कुछ कृषि नहीं की जा सकती और लोगों का जीवन जो है यापन बहुत कठिन हो जाएगा और इसलिए वो उनको निकालने का प्रयास करना शुरू करते हैं.
So they became so angry that from their mouth they generated fire and then they began to burn all of the trees around them.
और वो इतने क्रोधित हो जाते हैं उन वृक्षों को देख करके कि अपने मुख से वो अपनी तपस्या के प्रभाव से वो अग्नि प्रभावित करते हैं और पूरे पूरे उस वृक्ष के वन को जला के भस्म करते हैं.
And as the Prachetas began to burn all of the trees, then Brahma, who is the creator of all species of life, he immediately came there to that place.
और जब ये घटना घट रही थी उसी समय ब्रह्मा जी उत्पन्न वहां ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं जिन्होंने सभी सृष्टि की जो रचना की है ब्रह्मा जी वहां पर उत्पन्न होते हैं.
So Brahma looked at the Prachetas and said, you must stop. You must respect the environment around you. You must also respect the trees because they also have a very important part to play in this world.
और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कृपा करके इस अग्नि को रोकिए. ये जो अग्नि का प्रभाव है ये पूरे पर्यावरण को नष्ट कर देगी तो आपको अपने आसपास के पर्यावरण वातावरण का भी आपको ध्यान रखना चाहिए.
And in this way, the Bhagavatam teaches that we must respect everything within our environment and we must not unnecessarily disturb the environment around us.
और इस प्रकार से हमें भागवतम से शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार हमें अपने आसपास के पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए.
Even Krishna, when he saw the trees, he began to glorify the trees one day in Vrindavan.
यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब वृक्षों को देखते हैं वृंदावन में तो वो वृक्षों का गुणगान करते हैं.
Krishna was sitting underneath the tree and then he looked at the tree and he said, Aho eshambaram janma sarva prani upajivinam sujanasyeva ye samvai vimukha yantanarthina. He said, these trees, their life is a complete success because they give the entirety of their existence to serve others and nobody goes away from a tree feeling disappointed.
तो वो एक बार वृक्ष के नीचे बैठ करके वृक्षों को देख करके ये श्लोक बोलते हैं, कहते हैं कि ये वृक्ष जो है इनका जीवन पूर्ण रूप से सफल है क्योंकि वो अपना पूरा अस्तित्व ही दूसरों के कल्याण के लिए निछावर कर देते हैं, कोई भी उनके पास से वो निराश होकर नहीं जाते.
So Krishna had great appreciation for the trees because he saw that they were also playing a very important role in the world.
तो भगवान श्री कृष्ण वो बहुत प्रशंसा करते हैं वृक्षों की क्योंकि वो देखते हैं कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस संसार में.
One time Srila Prabhupada was walking with a devotee in the park.
एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ में एक उद्यान में भ्रमण कर रहे थे.
So they walked past and then Prabhupada stopped and he pointed into the grass.
तो बहुत तेज चल रहे थे प्रभुपाद जी वहां पर, जहां पर रुकते हैं और दिखाते हैं घास में कुछ चीज वहां पर दिखाते हैं वो.
And then Prabhupada said, what is this? Can you tell me what is this here?
Aur Prabhupada ji poochte hain ki wo kya hai wo ghaas ke beech mein.
So one devotee looked and he said, oh Prabhupada, those are just weeds. This is useless.
To wo kehte hain ki Prabhupada ji ye to sirf kharpatwar hai, ye kisi upyog mein nahi aate, upyoghin hai ye.
Prabhupada looked straight back at the devotee and he said, no, you are useless.
रूपा जी भक्तों की तरफ देखते हैं पीछे, कहते हैं नहीं आप उपयोगहीन हैं.
Prabhupada said, every single thing has use in this world. Every single thing in the environment has use. Only problem is you don't know and you cannot appreciate what the use is.
रूपा जी कहते हैं कि हर एक चीज एक वस्तु इस पर्यावरण में वो उपयोग से सहित है, वो उपयोगहीन नहीं है, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है कि कैसे उसको उपयोग करना है.
Therefore, we must not unnecessarily kill things in the environment. We should not unnecessarily waste things. We should not be neglectful of caring for the environment around us because Bhumi or Earth is our mother.
इसलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें कोई चीज ऐसे नष्ट नहीं करनी चाहिए. बहुत सा हमको जो कचरा है वो सब उत्पन्न नहीं करना चाहिए, आसपास के जो हमारे पर्यावरण है उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जानते हुए कि ये जो भूमि माता है ये हमारी माता है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए.
The fourth type of violence that we have to be careful of is violence towards our own body.
और चौथा जो अहिंसा हिंसा है वो हिंसा अपने शरीर के स्वयं के प्रति.
One time Sanatan Goswami, after he had escaped from jail, he came to meet Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri.
तो एक बार सनातन पाद गोस्वामी जब वो सब जेल से निकल करके आते हैं और वो उसके पश्चात जगन्नाथपुरी में आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए.
As he was traveling through the forest on the way to Jagannath Puri, he became infected with a skin disease.
जब वो वन से भ्रमण कर रहे थे और जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो उनके शरीर में त्वचा में एक त्वचा का रोग हो गया था.
So when he arrived in Jagannath Puri, his body was covered with blood and was itching and it was very unclean.
तो जब वो पहुंचे जगन्नाथ पुरी में तो उनके पूरे शरीर में बहुत खुजली हो रही थी और उनका जो पूरा शरीर था वो बिल्कुल देखने में बड़ा ही वो कुरूप जैसा हो गया था.
When Chaitanya Mahaprabhu saw Sanatan Goswami, he never saw any of those diseases. He was just happy to see his pure devotee. And Chaitanya Mahaprabhu was embracing him. And as he was embracing Sanatan Goswami, the blood from Sanatan Goswami's body was coming onto Mahaprabhu's body.
लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने उनके किसी रोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया. वो तो सिर्फ एक बहुत ही भगवान के सुंदर भक्त साधन पाद गोस्वामी उनकी भक्ति को देख रहे थे, उनको देख रहे थे और उनको आलिंगन कर रहे थे. जब वो आलिंगन कर रहे थे तो साधन पाद गोस्वामी देखते हैं कि उनके त्वचा से रक्त गिर करके उनके शरीर पर जा रहा है.
फॉर सनातन गोस्वामी दिस वॉज टू डिस्टर्बिंग टू हिज माइंड दैट ही वॉज कंटामिनेटिंग द बॉडी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन दिस वे.
और ये दृश्य सनातन पाद गोस्वामी के लिए बहुत ही ज्यादा विस्तृत करने वाला था कि कैसे उनके शरीर से ये निकलते हुए ये चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर को ये उसको कलुषित कर रहा है.
एंड देयरफॉर सनातन गोस्वामी सेड दिस बॉडी इज कॉजिंग सो मच कंटामिनेशन फॉर महाप्रभु. आई विल फिनिश दिस बॉडी. आई विल गो अंडरनीथ द रथ यात्रा कार्ट एंड आई विल कमिट सुसाइड.
और वो ये चिंतन कर रहे थे कि ये मेरा शरीर जो है ये बहुत ही कष्ट दे रहा है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं और वो दृश्य मैं देख नहीं पाता हूँ, उनके शरीर को ये मैला कर देते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को अंत कर दूंगा, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे जाकर के अपने शरीर को अंत कर दूंगा.
So one day when Mahaprabhu came to Sanatan Goswami, he could understand what Sanatan Goswami was planning to commit suicide.
तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं सनातन गोस्वामी के पास में वहां पर तो समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है. चैतन्य महाप्रभु समझते हैं कि ये आत्महत्या करने वाले हैं.
महाप्रभु looked at all of the devotees and he said, just see this Sanatan, he is a thief.
और वहां पर जितने भक्त होते हैं उनके पास वो देखते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखिए सनातन गोस्वामी को, ये एक चोर है.
So everyone was shocked. They said, Sanatan Goswami, he is a sadhu, he is a saint. How you can say he is a thief?
तो सब लोग बड़े अचंभित हो गए. करे ये तो एक साधु है सनातन पाद गोस्वामी, कैसे ये आप इनको चोर कह रहे हैं?
महाप्रभु said because he is trying to take away that which is not his.
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये वो चीज लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इनकी नहीं है.
महाप्रभु looked at Sanatan Goswami and said, you have already surrendered your body to me, now how you try to take your body away without my permission.
और वो उनकी ओर देखते हुए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन पाद गोस्वामी की ओर कि आपने स्वतः पहले ही अपने शरीर को मुझे न्योछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, अब कैसे अपने शरीर का आप मुझसे आप ले सकते हो?
He said, this body does not belong to you. It belongs to me because you have surrendered to me and I have many things I want to achieve through your body.
और आपका शरीर आपने मुझे समर्पित कर दिया है, अब ये आपका नहीं है और मुझे आपके शरीर के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य करवाने हैं.
And then Sanatan Goswami realized this body is not mine to commit suicide. I don't own this body. I am simply a caretaker of this body And this body is an opportunity, an instrument for me to serve Krishna.
और तब सनातन पद गोस्वामी समझ जाते हैं, अनुभूति करते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है और ये शरीर जो है ये एक अवसर मुझे मिला है भगवान की सेवा में उत्पन्न करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, ये उनकी संपत्ति है और उन्हीं की सेवा में उपयोग होनी चाहिए.
So if we abuse our body, if we neglect our body, if we don't take good care of our health, then actually we are committing violence towards this body which actually doesn't even belong to us.
इसलिए जब हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, अपने शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये जो कि हमें एक अवसर दिया जाता है भगवान की सेवा करने के लिए शरीर के द्वारा, तो निश्चित रूप से हम ये अपने शरीर के प्रति हिंसा कर रहे हैं.
Therefore, Srila Prabhupada was always wishing that the devotees would remain in good health. In his letters, he would always end the letter by saying, hoping this meets you in good health.
इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके सभी अनुयायीगण जो है वो अच्छे स्वास्थ्य में रहें, इसलिए वो अपने पत्र में हमेशा अपने शिष्यों को, अनुयायियों को, वो अंत में पत्र का अंत करते थे कि मैं आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा.
The final type of violence that I want to share with you today that we must avoid is violence towards Krishna.
और जो अंतिम पांचवा जो हिंसा है वो है हिंसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति.
One will say, how I commit violence to Krishna. I am a devotee of Krishna. I am trying to serve Krishna. I will never commit violence to Krishna.
तो कोई कह सकते हैं कि मैं तो भक्त हूं, मैं कैसे कृष्ण के प्रति कोई हिंसा कर सकता हूं, मैं कभी भी कोई ऐसी हिंसा कृष्ण के प्रति नहीं कर सकता.
But there is one thing that if we do this one thing, then this causes Krishna so much pain.
लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही कष्ट मिलता है उससे.
Does anyone want to guess on the chat? What is the one thing that if we do it, it causes Krishna so much pain?
तो क्या वो आप कोई लिखना चाहेंगे कि वो क्या चीज है जो एक चीज हम करना चाहेंगे तो भगवान कृष्ण को बहुत कष्ट मिलता है उससे?
Yes, Vaishnavapura, Jayashree says, Padmavati says, Bhagavat Apachar. Very good. Any other ideas anyone has? If we hurt his devotees, Shyamal says. Yeah, very good. Very good points. Let me tell you a story. Chaitanya Mahaprabhu had one great devotee. His name was Haridas Thakur.
चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही महान भक्त थे, उनका नाम था हरिदास ठाकुर.
हरिदास ठाकुर, his determination to chant the holy name was so great, we cannot even imagine how much dedication he had.
तो इतना उनका हरिनाम के प्रति श्रद्धा थी, उनकी एक निष्ठा, उनका जो दृढ़ संकल्प था उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते.
Haridas Thakur was captured by the Muslim government and they were telling him that you must stop chanting Krishna's names.
और जो वहां के जो समय मुस्लिम जो राज्यपाल थे उन्होंने उनको बंदी बना लिया और उन्होंने कहा कि आपको ये हरि नाम नहीं जपना है.
Haridas Thakur was not willing. He was not willing to stop. He was not willing to give up his practice. He was not willing to relinquish his vow to chant 300,000 names of Krishna every single day.
लेकिन वो बिल्कुल भी वो इच्छा प्रकट नहीं कर रहे थे कि मैं नाम नहीं जपूंगा, ऐसा उनकी बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो 300,000 नाम जप करने का संकल्प लिए थे प्रतिदिन.
And therefore, all the soldiers began to beat him in public. They were striking him, hitting him, and committing great violence towards him.
और इसलिए उनके सैनिक जो हैं, उस मुगल शासक के सैनिक जो हैं, वो उनको ऊपर बहुत प्रहार कर रहे थे, सभी जगह पर बाजार में जाकर के सबके समक्ष कोड़े से प्रहार कर रहे थे.
But Haridas Thakur was such a great saint that when they were hitting him, when they were committing violence towards him, he was just praying that Krishna, please protect them, please don't allow them to suffer because of what they're doing to me.
तो लेकिन उस समय वो इतने उनका भाव ऐसा था हरदास ठाकुर का कि जब उनको कोड़े पढ़ रहे थे उस समय भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कृपा करके आप इनको क्षमा करिएगा क्योंकि इनको ज्ञात नहीं कि क्या कर रहे हैं और इनको आपको एक दंड मत दीजिएगा.
In this way, they were hitting Haridas Thakur, beating him, but he was not dying.
और इस प्रकार से उनके ऊपर कोड़े बरसाते जा रहे थे, लेकिन वो मृत्यु उनको नहीं आ रही थी.
They couldn't understand. It was very confusing for them that how is this person still alive after we have hit him so much?
और वो लोग समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है कि हम इतना इनको कोड़े मार रहे हैं और लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अभी तक जीवित है.
Later on, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu performed a very, very special leela called the Mahaprakash leela.
और कुछ दिनों के पश्चात, कुछ समय के पश्चात बहुत ही प्रसिद्ध लीला होती है चैतन्य महाप्रभु की श्रीवास आंगन में, जिसको कि महाप्रकाश लीला कहते हैं.
In the Mahaprakash leela, Mahaprabhu began to reveal to different devotees many confidential things.
और वहां पर महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु बहुत से भक्तों को बहुत सी गुह्य बातें जो है प्रकट करते हैं.
And in that leela, when Haridas Thakur came, Mahaprabhu began to speak to him about the time when all the Muslim soldiers were hitting him.
और उस लीला में वो श्री हरदास ठाकुर को प्रकट करते हैं कि किस प्रकार जब आपको वो सभी जो मुगल सैनिक थे, जब आपके ऊपर कोड़े बरसा रहे थे, उस समय क्या घटना घटती है.
Mahaprabhu turned around and he showed Haridas Thakur. Mahaprabhu showed on his own body. He said, look, all of the whips, all of the hits, all of the beatings that they were directing towards you, I was taking them on my own body.
और तब चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं अपनी उत्तरी उतार करके अपने पीठ पर पीछे कि देखो जो आपको वो मुगल सैनिक जो है वो कोड़े बरसा रहे थे, जो आपको वो प्रताड़ना दे रहे थे, वो सारा कुछ मैंने अपने अपने शरीर पर धारण किया.
Haridas Thakur was shocked. He said, Krishna, Mahaprabhu, how you could do such a thing?
और ये देख करके बिल्कुल विस्मय हो गए हरिदास ठाकुर कि कैसे आप ये कर सकते हैं महाप्रभु.
Mahaprabhu said, I had no choice because when they were hitting you, you were praying that please save them.
क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा अवसर नहीं था, क्योंकि जब आप उनको आपके ऊपर मार पड़ रही थी तो आप बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि आप कृपा करके उनकी रक्षा करें.
Therefore, I had to cover your body and take the hits myself because if they had hit you, there would be no chance for me to save them.
इसलिए मुझे आकर के मुझे अपने शरीर पर वो मार सहन करना पड़ा, क्योंकि अगर आपके शरीर पर कोई मार पड़ती तो उनको उनको बचाने का, उनको बचने का कोई उपाय मेरे पास बचता नहीं, इसलिए मैंने आकर के वो सारी मार अपने ऊपर ली.
Through this pastime, we are realizing that if we create violence towards a Vaishnav, if we hurt a Vaishnav, if we create some distress for a Vaishnav, then Krishna takes it on his own. He takes it, hurts him directly.
तो इस लीला से हम समझ सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है ये वैष्णव के प्रति. कोई भी अगर हम हिंसा करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो जिससे वो विचलित होते हैं, तो भगवान कृष्ण कितने उससे विचलित होते हैं, ये उनको दुख पहुंचाता है, स्वयं को भगवान कृष्ण बहुत दुखित होते हैं इससे.
Of all activities, अपराध is the worst.
और सभी अपराधों में ये वैष्णव अपराध जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है.
You see, there are two things. One is sin or pap, and the other thing is offense or aparad.
तो दो अलग-अलग चीजें हैं. एक तो पाप और दूसरा अपराध.
Sin or pap means when you do something without Krishna in the picture.
पाप वो है जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण दृश्य में नहीं है और आपसे कुछ त्रुटि होती है, पाप कहलाता है.
For example, Krishna says, "Ye pachanti atma karanatta." If you eat something, but you do it without Krishna, without offering it to Krishna, then this kind of eating is pap because you're doing it without Krishna.
जैसे कि अगर हम कोई जो भोज्य पदार्थ है भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण करते हैं, तो ये पचंत आत्मा कारण उसको बताया गया कि ये पाप ही खाते हैं.
But offense, aparad. Means not when you do something without Krishna, but when you do something which is against Krishna.
लेकिन अपराध का मतलब ये नहीं कि जहां पर आप कृष्ण के बिना कुछ करते हैं, लेकिन आप कृष्ण के विरुद्ध कुछ करते हैं.
दिस इज 100,000 टाइम्स वर्स.
और ये हजारों हजारों गुना ये इसका प्रभाव जो है दुष्प्रभाव पड़ता है.
And therefore, in our life, we must also be careful not to commit violence to Krishna. And violence to Krishna is committed when we offend Krishna's devotees.
इसलिए हमको बहुत सावधान होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के प्रति हिंसा नहीं करें. और वो कब होता है? जब भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति हिंसा होती है.
Nalukuvara and Manigriva were not able to awaken their spiritual consciousness because their dhan led to dumba, which means pride, and their dumba led to himsa, which means violence.
तो नलकुबेर मणिग्रीव वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनका जो धन का प्रभाव था वो उनको दंभ उत्पन्न किया, अहंकार, और वो अहंकार से प्रभावित होकर के उन्होंने हिंसा किया.
If one is violent, their spiritual life will never awaken.
अगर कोई हिंसात्मक है तो उनका आध्यात्मिक जीवन कभी भी जागृत नहीं होगा.
So we must think very, very carefully about avoiding 5 types of violence.
इसलिए हमको ये पांचों जो अभी हिंसा बताए गए उसके प्रति हमको उसको बचने के लिए हमको बहुत गंभीर होना चाहिए.
Let me just check now if everyone will remember the 5 types of violence.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अभी मैं परीक्षा लेता हूं कि क्या सभी को पांचों प्रकार के हिंसा याद हैं.
So can someone tell me the first type of violence? Violence towards?
तो सबसे पहला जो अपराध है वो क्या है? कौन बताना चाहेंगे?
Violence towards animals.
Violence towards animals. Very good. And in this, we gave the example of Prachina Barishat.
तो सबसे पहले पशु के प्रति जो हिंसा है और उसमें हमने श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंध से प्राचीन परिषद की कथा का सुना.
Can someone tell me the second type of violence we have to avoid?
दूसरे प्रकार का अपराध कौन बताएंगे? जो हिंसा है क्या बताएंगे?
Yes, violence towards other people, and the example that we gave was the example of Dhruva Maharaj fighting the Yakshas.
तो दूसरा जो हिंसा बताया गया वो है दूसरे मनुष्यों के प्रति हिंसा, और उसका उदाहरण दिया गया ध्रुव महाराज जब वो अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्ष के ऊपर आक्रमण कर रहे थे.
Can someone tell me the third type of violence that we must avoid?
और तीसरा जो हिंसा है जो हमको बचना चाहिए वो क्या है?
Yes, the nature, the environment, and the example we gave was the example of the Prachetas who tried to burn up all of the trees.
तो ये है हमारे पर्यावरण और हमारे जो वातावरण है उसके प्रति, और ये इसमें उदाहरण दिया गया जो प्रचेता थे जब उन्होंने वृक्षों में आग लगाया था.
And the fourth type of violence that we must avoid, yes.
और चौथा जो ये है वो हमारे स्वयं के शरीर के प्रति.
Violence towards our own body, and we gave the example of Sanatan Goswami who was trying to kill his own body inside. Mahaprabhu told him not to.
तो वहां पर हमने उदाहरण देखा था सनातन पाद गोस्वामी का जिन्होंने वो अपने स्वयं के शरीर को नष्ट करना चाहते थे और महाप्रभु ने उनको कहा कि ऐसा नहीं करना है आपको.
And the final type of violence is yes, violence towards Krishna. And we gave the example of Haridas Thakur who was being beaten, but Krishna Mahaprabhu himself was taking that on his body.
और पांचवा जो हिंसा है वो हमने देखा वो हरदास ठाकुर जी दिखाते हैं किस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और कैसे हमने देखा कैसे हरदास ठाकुर जी को जब वो मार पड़ रही थी तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इस लीला को.
So therefore today I wanted to share with you from this pastime of Bhagavatam that let us give up all violence, let us give up all cruelty, and in this way our heart will become a fertile place for bhakti to grow.
तो आज हमको प्रभु जी ने इस लीला के माध्यम से नलकुबेर मणिग्रीव लीला के माध्यम से भागवतम से बताया कि किस प्रकार से हम लोग भी प्रयास करें कि ये हिंसात्मक दृष्टिकोण जो पांचों प्रकार की हिंसा है उससे हम बचें और हमारे हृदय को ऐसा एक वातावरण, ऐसा अनुकूल स्थान बनाए जहां पर कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है उसका बीज बोया जा सके.
थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की जय.
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कर रहे हैं और यहाँ पर विराम देते हैं. Prabhu, with your permission.
Yes, Prabhu, yes.
Can we take some question?
Yes.
We have some question from yesterday, so we can also take that one, Prabhu.
Sure, if there are questions, sure.
तो जिसकी कोई जिज्ञासा है प्रश्न है आज के विषय में और कल कुछ भक्तों के प्रश्न बाकी थे रामचंद्र सुंदर प्रभु यू हैड सम क्वेश्चन यस्टरडे सो प्लीज प्रभु यू कैन स्टार्ट विद एंड देन अदर डिवोटीज कैन आस्क
थैंक यू प्रजापति थैंक यू सो मच सुतपा प्रभु फॉर फॉर वेरी लवली क्लासेस बोथ यस्टरडे एंड टुडे सो एनलाइवनिंग यू हैड कवर्ड द एंटायर पर्पट एंड गिव अस द की पॉइंट्स सो इट्स मेकिंग अस यू नो read Srila Prabhupada's purports the same way that you are looking at those purports and churning it out for us. Thank you so much, Prabhu.
Thank you, Guruji.
Prabhu, my question with regards to yesterday's, we touched on that point wherein you mentioned about those two things with which we can save ourselves from the misfortune that can come to us from wealth. So the second option, which is the simple living, I thinking, you know, that's the one size fits all solution, you know, which each of us can aspire and adopt because that merits that kind of a Krishna conscious life in itself. So it automatically takes care of our situation there. But on the first one, you know, to serve the Vaishnavas, here, Prabhu, so when we take, sorry that I'm being a little descriptive because of my own inability to coin the question in a very concise manner, so please forgive me for that. So in the serving the Vaishnavas and making sure that the little wealth that we have by the mercy of Krishna is put into best use. So there, Prabhu, we kind of get caught up in the, you know, the secular planning mentality when we do that approach. So when we plan, automatically what happens is that planning in itself, innate, has got a little bit of, you know, speculation about how the future is going to pan out for us, you know. So we invariably go wrong. So what should be our approach? It should be an absolute money allocation approach, or we should take percentage approach. We have this Rupa Goswami's solution of using the percentages. But again, when we have to apply the concept of practicality, so invariably we go wrong because of the, you know, the still we are in that anartha nivritti stage, you know, we are going through our own struggles of our vasanas. So we generally try and not go for the right solution there. So is there something which is Krishna conscious practicality that we can adopt? So that would be my submission.
Yes, thank you so much, Ramchandra Sundar Prabhu. Braj Prakash Prabhu, would you like to repeat the question in Hindi?
Yes. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि आपने बहुत सुंदर क्लास दी कल आज के बारे में भी और बहुत सुंदर रूप से आपने तात्पर्य से मुझे बताया कि जो हम लोग जो सीख सकते हैं जो सीख हमारे लिए है तो दो चीजें बताई थी कल आपने एक तो ये था कि हमें सादा जीवन उच्च विचार और उसके पहले बताया गया कि किस प्रकार से जो हमारे पास जो धन के दुष्परिणाम से बचने के लिए जो भी धन हमको भगवान कृष्ण की कृपा से मिलता है उसको हमको भगवान और वैष्णव की सेवा में युक्त करना चाहिए तो वहां पर हम देखते हैं कि जैसे जो बताया गया कि 1% के रूप में रूप गोस्वामी जी बताते हैं उदाहरण देते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग देते हैं कि अभी हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है और वो जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उस हिसाब से क्या वो एक संख्या होनी चाहिए या प्रतिशत उसमें भी हम कभी कभी ठीक से मतलब उसका हम निर्णय नहीं ले पाते हैं और उसके चूंकि अभी भी हमारे हृदय में अनर्थों की निवृत्ति बनी हुई है निवृत्ति नहीं हुई है तो अभी भी पूर्ण रूप से उसको हम उस किस प्रकार से कितना धन हमको सेवा में लगाना है वो हम उसका आकलन ठीक से नहीं कर पाते हैं रामचंद्र प्रभु दिस इज व्हाट यू मेंट प्रभु और
या थैंक यू सो मच प्रभु यस प्रभु यस प्रभु
ओके प्रभु जी
थैंक यू प्रभु जी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रभु जी देयर आर आई एम आल्सो नॉट सो क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस बिकॉज आई लिव प्रैक्टिकली अ ब्रह्मचारी माय होल लाइफ बट आई विल ट्राई टू शेयर सम प्रिंसिपल विद यू
Thank you, Papa.
तो प्रभु कह रहे कि बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है ये, और चूंकि मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी के रूप में व्यतीत किया हूँ तो ये किस प्रकार से धन का आंकलन होना चाहिए मुझे व्यवहारिक रूप से नहीं पता, लेकिन जो भी सिद्धांत है वो बताऊंगा मैं आपको।
Actually, we have great appreciation for the grihasthas and all of you who, despite so many different pressures, are still giving so much time, service, and practical wealth. Without you, the Krishna consciousness movement cannot go on.
प्रभु कह रहे हैं कि मेरे मन में गृहस्थों के लिए विचार में बहुत ही प्रशंसा है, क्योंकि अपना इतना व्यस्त और इतना जो जीवन यापन है और परिवार के साथ में रहते हुए फिर भी इतना समय और इतनी शक्ति इतना संसाधन आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं।
Prabhuji, I gave two principles. One was engaging dhan in service, and the other principle I gave is simplicity. And these two principles are actually very intimately connected.
तो मैंने दो सिद्धांत दिए थे कल, एक तो धन की सेवा भगवान कृष्ण और वैष्णवों में धन को लगाया जाए उस सेवा में, और दूसरा सादा जीवन उच्च विचार, और दोनों ही बहुत ही आपस में युक्त हैं, संबंधित हैं।
If one wants to know whether they are giving as much as they can give in service, then a good indication is how much they are following the other principle of simplicity in their life.
तो ये ज्ञात करना कि लोग क्या पर्याप्त संख्या में या पर्याप्त प्रतिशत में धन दे रहे हैं सेवा के लिए भगवान कृष्ण और वैष्णव की, ये ज्ञात होगा, ये इंगित करता है कि उनका जो दूसरा सिद्धांत है सादा जीवन वो किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं।
If one says, no, no, I cannot give too much in service because there are many unknown things and therefore I cannot give all of this to, but then in the other aspect of their life, they are not, their simplicity is going down and their extravagance is going up, then you can understand it may not be entirely sincere.
एक तरफ देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मैं इतना अभी अभी हम इतना धन नहीं दे सकते, इतना हम नहीं हो पा रहा हमसे, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनका सादा जीवन जो है उसमें और भी चीजें वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, एकत्रित करते जा रहे हैं, जीवन और वैभवपूर्ण होता जा रहा है, इसका मतलब कि वो गंभीर नहीं है।
However, as a grihastha, you may say, I cannot give fully all of this Lakshmi now. I have to keep it just in case something happens. And then later on, if nothing happens, then you can always bring that money back to Krishna.
और कभी कभी ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं अभी पूरा धन नहीं दे सकता हूँ और मैं अभी इसको चाहिए मेरे आपात स्थिति के लिए, और बाद में जब देखते हैं कि ठीक है बाद में इसको मैं भगवान को आना चाहिए भगवान के पास में सारी संपत्ति।
In the Gaudiya Math of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, we find many amazing examples.
श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज के गौड़ी मठ में बहुत से ऐसे अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं।
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had some grihastha disciples, and you know what they would do? When they would earn money, they would give everything to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and then they would tell him, Guru Maharaj, you give us back whatever you feel we need.
कुछ ऐसे गृहस्थ थे जो कि पूरा पूरा अपना जो उनकी कमाई आय होती थी वो सब ला करके अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज को देते थे, और फिर बाद में कहते थे कि आप जो आपकी स्वेच्छा हो हमारे परिवार को चलाने के लिए आप इसमें जितना धन चाहें आप मुझे दे सकते हैं।
Now this may not be practical for us or achievable, but let me share one final beautiful statement that Srila Prabhupada made. I'll share this statement with you.
तो ये हो सकता है कि बहुत व्यवहारिक नहीं हो हमारे लिए जो अभी हमने ये चर्चा की, लेकिन अभी मैं आपके साथ प्रभुपाद जी का एक वृत्तांत वो शेयर करना चाहता हूँ।
Srila Prabhupada once said, and these were his exact words, in my life I had one policy, everything for Krishna and nothing for me, and therefore I was never disappointed.
प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जीवन में मैंने एक सिद्धांत बहुत अच्छे से अपनाया कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, और इसकी वजह से मुझे जीवन में कभी भी निराशा नहीं मिली।
In our own time, we can think about this statement again and again. Many realizations will come.
प्रभु जी कह रहे हैं कि अपने अपने समय के अनुसार इस वाक्य के ऊपर मनन करेंगे हम सब, हमको बहुत सी अनुभूतियां मिलेंगी।
if we hold back our dhan for some kind of personal gratification, then ultimately it will not satisfy us. We will be disappointed.
अगर हम येन के प्रकारण कुछ धन रखते हैं अपने लिए, अपने स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए, तो निश्चित रूप से अंततः हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे।
But if we use our dhan in the right way, with the right motivation, with in the right situation, then the dhan used appropriately becomes artha, which means wealth, which will actually bring some inner happiness.
लेकिन उसको हम सही स्थान पर सही स्थान पर सही भाव से उसका हम उपयोग करते हैं भगवान वैष्णव की सेवा में, तो वो धन फिर अर्थ बन जाता है। अर्थ का मतलब कि वो हमारे अंदर आंतरिक प्रसन्नता लेकर के आएंगे।
And Prabhuji, I'll give one final other point to consider.
और अंत में मैं एक और अंत में एक वाक्य दूंगा जो हम लोग सोच सकते हैं उसके बारे में।
If we want to know how sincere we are in how much we're giving to Krishna and how much we're risking for Krishna,
अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितने गंभीर हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पण करने में, दान देने में,
then we can look at our life and say, how much am I risking to spend my wealth in other aspects of my life?
तो हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि हम कितना और चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और बाकी चीजों को बारे में हम अपना धन अर्जित करने में लगाने में।
In order to buy some property, or in order to pursue some venture, or in order to gain some influence, we are more willing to give, take a risk. But when it comes to Krishna, we may say, no, no, Krishna is too risky. But you know my heart, I want to give you, but it's too risky. But for everything else, we're ready to risk.
तुम देखते हैं कि कुछ संपत्ति खरीदने हो जहां पर हमारा कुछ नाम यश प्रभाव ऐसा कुछ होने वाला हो, तो हम बहुत चुनौती लेकर के वहां पर धन लगाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कोई ऐसी लगता कि नहीं, तो बहुत ज्यादा चुनौती पूर्वक है मेरे जीवन के लिए, हम नहीं कर पाएंगे इसके लिए।
So most of the time, every devotee, if they look deep within their own heart, most of the time, they will be able to understand.
तो ज्यादातर समय अगर अपने हम गहराई से अपने हृदय में आकलन करें तो हम समझ सकते हैं कि क्या सत्य है।
Thank you, Prabhuji. Please forgive me, Prabhuji. You are my senior. I feel bad saying all of these things, but since you asked me, I say for my purification.
Thank you so much, Sita Prabhu. Thank you so much, Prabhu.
Does anyone else have any question they would like to ask or on yesterday's?
Hare Krishna.
Yes,
Hare
Krishna.
Yes, sir. Shrokish Prabhuji.
Hare Krishna.
Other mobile, I think, other devices, you have to just maybe some distance has to be maintained, then you can speak.
Yes, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. Sorry, Prabhuji. Dhanwat Pranam, Prabhuji's and Mataji's. Thank you very much, Prabhuji, for enlightening us. From yesterday, Prabhuji, when you started the class, you were glorifying Narad Muni. So that question came to me. First of all, about sadhu. What are qualities of a sadhu? Because this question was connected to Narad Muni. And what is the best way we can serve a sadhu, Prabhuji? So please enlighten us on this.
Thank you, Prabhuji. Bhagavatam explains who is a sadhu. Titikshava karunika surida sarvadehinam ajata shatrava shanta sadhava sadhu bhushana. If you come across someone who is tolerant, someone who is merciful, someone who has no enemies, someone who is peaceful, these are all the characteristics of someone who is a sadhu. And so.
तो प्रश्न ये था कि कल आपने बताया नारद मुनि जब वहां पर आते हैं दृश्य में, तो कैसे हम समझ सकते हैं एक साधु के बारे में, और कैसे फिर हमें साधु का स्वागत करना चाहिए, कैसे उनके साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभु कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में साधु की परिभाषा दी गई है, स्कंद में वहां पर बताया गया कि जो बिल्कुल भी हमेशा विनम्र होते हैं, कोई उनके मन में ईर्ष्या नहीं और हमेशा सबके ऊपर करुणा करते हैं, ये गुण बताए गए हैं साधुओं के, तो वो साधु कहलाते हैं।
In the Bhagavad Gita, Krishna gives a more broad definition of who is a sadhu.
और भगवत गीता में और भी सुंदर रूप से साधु के बारे में परिभाषा दी गई है।
Krishna says in the Gita, sadureva samantavya samyagvya vasito hisa. Anyone who is determinedly engaged in devotional service, even if sometimes they may do something wrong, if they are determined in their devotional service, they are to be considered sadhu.
तो वहां पर बताया गया कि जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, संकल्प ले चुके हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कभी कभी उसे कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो भी उनको साधु ही समझना चाहिए।
So there are many different levels of sadhu. And in the ultimate sense, the sadhu is one who is engaged in devotional service completely, who has all good qualities, and who has no personal motivation or desire within their heart.
इस प्रकार साधु के कई अस्त्र बताए गए हैं, और देखा जाए तो साधु एक्चुअली साधु की परिभाषा बताई गई कि ये भी हम समझ सकते हैं कि साधु वो हैं जो भगवान की भक्ति में सेवा में युक्त हैं, सभी जो ऐसे दिव्य गुण हैं उससे आच्छादित हैं और उनके मन में कोई भी स्वार्थ निहित नहीं है।
And one practical way you will be able to know who is a sadhu is that their words will cut all of your attachments.
और व्यवहारिक रूप से हम समझ सकते हैं कौन साधु हैं, जिनके जो शब्द हैं वो हमारे भौतिक आसक्तियों को काटते हैं, तो वो साधु हैं।
Sadhu means one who cuts.
Sadhu का अर्थ है जो हमारी ग्रंथि को काटते हैं।
Tadodhu sangamut srijya sadhu satseja buddhiman shanta eva syachindanti manovya sangamukti bi. Their words are ukti bi. The words of a sadhu are so sharp that they are able to cut the material attachments within the mind of the living entity.
तो साधु के शब्द जो है वो इतने धारदार होते हैं कि जो व्यक्ति के मन में भौतिक आसक्ति है छिंदते उसको काट देते हैं उसको.
So Srila Prabhupada, by his words, once our Mukunda Maharaj, he was a hippie, he went to see Prabhupada for his first lecture in 1965, I think, in New York. He went to see and hear Prabhupada lecture.
तो श्री प्रभुपाद जी के समय में जब मुकुंद महाराज समय जब वो हिप्पी की अवस्था में थे 1965 में वो प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनने के लिए आए थे.
After the lecture, he came out and he thought to himself, I didn't understand one word because his accent was so difficult to understand, but the vibration and the sound coming from his mouth was so powerful that it changed my heart.
तो ने कहा कि मैं तो एक शब्द भी नहीं समझा उनके प्रवचन से, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था वो उसकी वजह से मुझे कुछ भी शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन उसकी जो ध्वनि थी, उनके मुख से ध्वनि जो निकल रही थी, उस ध्वनि के प्रभाव से मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया।
And the best way to serve a sadhu is to serve the instructions of the sadhu and follow the instructions of a sadhu.
और सबसे उत्तम उपाय है कि फिर ऐसे भक्तों जो साधु हैं उनके कैसे स्वागत करना है, उनके वचन का पालन करके, उनकी वाणी का पालन करके सेवा की जाए।
Few days ago, we were honoring the disappearance day of Srila Prabhupada.
तो दो दिन पहले 18 तारीख को हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस मना रहे थे।
But Srila Prabhupada never disappears.
और श्रील प्रभुपाद तो कभी भी वो अंतर्धान नहीं होते।
Every single day you can meet Srila Prabhupada if you want to.
हर एक दिन प्रतिदिन हम श्री प्रभुपाद जी से हम मिल सकते हैं अगर हम चाहें तो।
In the Bhagavatam, Srila Prabhupada writes, the spiritual master lives forever in his instructions and the follower lives with him.
प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में कि आध्यात्मिक गुरु अपने उपदेशों में सदैव जीवित रहते हैं और उनके शिष्यगण उसका पालन करते हुए सदैव उनके साथ रह सकते हैं.
So this is what a sadhu is, and this is what it means to serve a sadhu.
तो ये साधु का अर्थ है और कैसे साधु की सेवा करनी चाहिए. रचुण कृष्ण प्रभु जी.
Okay.
Yes, Prabhuji, thank you very much for the what I can say that Prabhuji implement. Try my best to implement very wonderful instructions. Thank you, Prabhuji.
Thank you so much, Prabhu. Sutapra Prabhuji. Okay. We are really very, very grateful to Prabhu. It was such an amazing class, Prabhu, these 2 days. And so many the key messages we received, actually, which we can implement in our life. And Prabhu, especially the way you, last time also I mentioned this, we are very impressed the way you recite the shloka. It's so sweet, Prabhuji. And we'll try to follow that that meter, actually. So nice. And yesterday and today also, we could see that it was Srimad Bhagavatam 10th Canto. But you took that pastime from Nalkuvar Manigri and given so many practical tips, which we can really, being a practitioner, we can implement, we can think about this, we can plan about this. It was so nice, Prabhuji, and very sensitizing class and very wonderful class, Prabhuji. Thank you so much. We are very grateful to you.
Thank you so much for inviting me, and I wish all of you the best, and I hope to...
also look.